Thank you. नित्य जीवन में पड़ा है ना, तो वो नित्य निगोरिया भी वहां पे नित्य निगोर को अनादि शांत करके और यहां आकर, अरे ऐसा भी हुआ सीधे सीधे मनुष्य पर्याय में आ गए। 8 वर्ष में सम्यक दर्शन प्राप्त किया और मुनि दशा अंगीकार करके 8 वर्ष अंतर मुख में केवल ज्ञान में दिया। बाकी की गतियां क्या, बाकी की गतियां केवल ज्ञान में देखी हुई। तो गुरुदेव ने उसमें से एक बहुत बड़ी बात निकाली, उन्होंने कहा कि भाई जब नित्य निबोध का जीव भी परिगमन करने योग्य है तो वो भी अभव्य जैसा नहीं है, तो अपना विचार है तो तू तो नित्य निबोध के महाकलंक से छूट गया। नहीं दुर्लभ नहीं जो चिंता मणि है, क्यों पर्याय नहीं तरस्तणी, और कौन सी पर्याय दुर्लभ नहीं, तो मैंने दुर्लभ मैंने कोई बहुत बड़े राजा महाराजा का भोग मिला होगा। उन्होंने लिखा लट पीपी, गजब हो गया, ये लट का भोग मिले तुम इसे चिंतामणि कह रहे हो, दुर्लभ कह रहे हो। हाँ दुर्लभ भी है और चिंतामणि भी है, दुर्लभ इसलिए कि नित्य निबोध में आज भी ऐसे अनंत जीव पड़े हैं। भाई जो नित्य निबोध में पड़े हैं वो आज भी क्या, जो जो भी नित्य निबोध में पड़े हुए आज तक निबोध से नहीं निकले उसी का नाम नित्य निबोध है, बराबर। इसलिए हम कहेंगे आज भी ऐसे जीव पड़े नहीं, अरे नित्य निबोध में पड़े ही वो है जो आज तक निकले ही नहीं उसी का नाम था नित्य निबोध। और जिनवाणी एक बात और कहती है और सुन लो, अनंत काल में कभी नित्य निबोध से नहीं निकलेंगे ऐसे जीव भी हैं। जब ये लाइन पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है अगर हम लट भी हो गए ना लट भी, तो चिंतामणि जैसा दुर्लभ रत्न अपन ने प्राप्त कर लिया। क्यों, क्योंकि हमारा नित्य निबोध वाला जो तो कलंक था हमारे ऊपर, तो नित्य निबोध वाला कलंक था। तो गुरुदेव ने कहा था कि भाई नित्य निबोध का जीव भी वहां से शादी अनंत उसको निबोध को अनादि शांत करके वहां से निकल करके मोक्ष मार्ग की आराधना साधना उपासना कर सकता है। तो तू तो यहां तक आया है, मनुष्य कुल तेरे को मिला, मनुष्य कुल में भी तीर्थंकरों का देश मिला, तीर्थंकरों का देश तो मिला होता लेकिन तीर्थंकरों का धर्म नहीं मिला होता, तो तीर्थंकरों का धर्म भी मिला और तीर्थंकरों के धर्म में भी नकली धर्म नहीं मिला, दिगंबर धर्म मिला। और मैं और आगे बढ़ू कहूं तो दिगंबर धर्म में भी गुरुदेव श्री का बताया हुआ तत्व ज्ञान मिला, क्योंकि आज ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती, दिगंबर धर्म यदि मूल रूप में कहीं सुरक्षित है कुछ गुरुदेव श्री के वचनों में सुरक्षित और कहीं सुरक्षित, सब नटिया भेट आ गया। तो यहां तक अपने को मिला तो बाहर की कमी क्या है, बताओ बाहर के साधनों की कोई कमी। और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अरे तेरा भगवान आत्मा तू तो सिद्ध भगवान के समान है, शुद्ध गुण पर्यायों सहित, ये शब्द क्या प्रयोग किया है, जैसा सिद्ध का स्वरूप तो वैसा ही तेरा स्वरूप है। इससे ज्यादा क्या कहलवाना चाहते सिद्ध के जैसे द्रवगुण पर्याय कि वैसे ही तेरे द्रवगुण पर्याय है, शुद्ध नहीं से देखी तू, ये विकार विकार ये तेरी पर्याय नहीं, गागादि भाव ये तेरी पर्याय नहीं है, निर्मलता मैंने जिसको पहले उन्होंने संसारी भाव में छायिक भाव को निकाल दिया था, और इधर जब शुद्ध गुण पर्यायों की बात की कि शुद्ध गुण पर्यायों से सिद्ध भगवान के समान है, यहाँ तेरी पर्याय कौन सी, सिद्ध दशारूप पर्याय वो तेरी पर्याय है। आगे समझ आगे नहीं है कौन क्यों, क्योंकि वो पर्याय ऐसी कि एक बार प्रकट होने के बाद अनंत काल तक के लिए उसका अभाव हुआ, तो तेरी पर्याय तो हम सिद्ध दशारूप पर्याय को तेरी पर्याय कहते हैं, शुद्ध नहीं से तो वो तेरी पर्याय है कि ये भिखारी भिखारी ये सब कोई तेरी पर्याय है, द्रव्य से तो सिद्ध भगवान के समान है। अरे तेरा पर्याय भी सिद्ध जैसी पर्याय का तू मालिक है, एक बार अपने उस स्वभाव को स्वीकार तो कर, गुरुदेव बोलते ना हा पाड़ हालत बदल दे। क्या मतलब? अरे प्रभु एक बार अपने प्रभुत्व की हा पाड़, उसके लिए उदाहरण भी देते थे कि जैसे उदाहरण क्या देते थे कि जैसे कोई लड़का हो और किसी चक्रवर्ती की कन्या का संबंध उसके लिए आया हो और वो उसको तिलक करने आई हो, संबंध के लिए तिलक करने आई हो और ये कहे कि मैं मुंह धो के आता हूं, तो कहते तेरे दिन फिरते है। इसी तरह ऐसा अद्भुत तत्व कि मैं कैसा हूं, मैं सिद्ध भगवान के समान, ये तो समझ लो चैतन्य चक्रवर्ती सिद्ध परमात्मा का, अरियंत परमात्मा का संदेश अपने लिए आया और इस संदेश को हम हर्ष पूर्वक झेले नहीं, हर्ष पूर्वक इसे हम स्वीकार नहीं करें। आचार्य कहते तेरे दिन फिर गए, तेरी कहां की तैयारी है हम कहना नहीं चाहते। अरे जब आचार्य कह रहे हैं कि तू सिद्ध भगवान के समान है, ये क्या कहता, वो तो निश्चय नहीं थी, अपनी भेड़ अकल लगाए भी नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं ना, तो ये क्या कहता है आचार्य भगवान कितने फोर्स से ये बात इसको कह रहे हैं और ये कहेगा वो तो निश्चय नहीं थे, ये बात व्यवहार में से तो ऐसा है भी है ना, वो सारी बात का मतियम बैठ है। आचार्य को पता नहीं क्या निश्चय से ही व्यवहार थे, हम सलाह देंगे आचार्य को, आचार्य को पता नहीं विकृति है पर्याय राजदेश वो है, हम आचार्य देव को पता नहीं। उसके बाद भी वो कोई चीज कह रहे हैं, उस बात पर वजन जाना चाहिए या अपने आग्रह खड़े होना चाहिए, ये नतीजा बात समझ आती आ गया। अर्थात जो जीव व्यवहार नय के कथन से और कई आदि विभाव भाव वाले होने से संसारी हैं, वे सब शुद्ध नय के कथन से शुद्ध गुणों तथा शुद्ध पर्यायों वाले होने से सिद्ध कुदरत। अब इससे ज्यादा क्या कहना चाहते, अब ये तो चाहता है कि बस मेरे को ऐसा का ऐसे सिद्धालय में बैठा होगा, ये तो नहीं हो सकता। शुद्धात्म स्वभाव की सन्मुखता का पुरुष प्रयत्न तो खुद ही करेगा तो होगा। ये तो चाहता है आचार्य ने सिद्ध भगवान के समान तो कह दिया, अब आचार्य से कहता हूं महाराज आपने सिद्ध भगवान के समान तो मुझे बताई दिया, सिद्धालय में भी आप ही रहते हो, नहीं जाना पड़ेगा, ये नहीं बता दिया। ये निर्णय जिसको आ जाए, देखो सिद्ध ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा निर्णय जिसको आ जाए, अब वो जीव अनंत काल तक संसार में रहे अवस्था की दृष्टि से भी देखे वो नहीं सकता, और ऐसा निर्णय नहीं आवे तो तुम धर्म के नाम पर कुछ ही कर लो, शरीर के वस्त्र छोड़ करके नग्न दिगंबर दशा धारण करके जंगलों में रहे और महामंद कसाय का शुक्ल लेशा का प्रणाम करके नौवे ग्रेव गए, कौन सा भी मान गया। अभी किसी के जरा से शुभ भाव और जरा से बाहर का जीवन अपने को ऐसा दिखे ना, अपने ऐसा जैसा इनके जैसा अपने को लगता क्या लगता है अपने में तो बहुत कमी है, तो बहुत आगे बन गई। लेकिन सच बताना, तत्व निर्णय के मार्ग में लगा हुआ जीव और तत्व निर्णय से विरुद्ध चलकर मात्र बाह्य शुभाचरण करने वाला जीव, उनमें कौन आगे बढ़ा हुआ है, समझा गया। ये तो अनंत बार हुआ है, समझे, दो चीज अनंत बार हो गई, उसको क्या मिल गया अपने जय दर्शन। और तत्व निर्णय, तत्व निर्णय का फल तत्व प्रतीत किया गया, पंडित जी ने लिखा वो स्वाप्रकाश, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित जीव तत्व विचार की प्रतीति करे, उस शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। सम्यक का अधिकार नहीं है, कह दिया क्यों? क्योंकि ये करके वो अपने को मानता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ धर्म के लिए, मैं कुछ धर्म कर रहा हूँ। जहाँ इन सरासित शुभ भावों में मैं धर्म कर रहा हूँ ऐसा अभिप्राय हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के दरवाजे बंद हो गए। आगे बहुत साते झुलवर सके का सर को अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग लीजिए। अरे अनंत ज्ञानियों का एक 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 दिशा निर्देशन, हम लोगों ने क्या किया? हम लोग शरीर का रोग मिटाना हो तो डॉक्टर के दिशा निर्देशों का पूरा पूरा पालन करते ही नहीं करते, है ना? और कदाचित उसमें कोई गलती भी हो जाएगी, समझ लो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक भाव नष्ट होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। एक भाव जाएगा, अगला अगले भाव में फिर नया शरीर मिल जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन फिर भी जहां मात्र एक मरण का प्रश्न है वहां पर हमारी गंभीरता कितनी होती है। डॉक्टर ने जो कह दिया वो लक्ष्मण रेखा होती है, इससे बाहर हम कदम नहीं रखते। और धर्म क्षेत्र में तो धर्म क्षेत्र में सबने अपने मन मर्जी का धर्म माना, जिसको जो करना है वो करेगा, ज्ञानियों के दिशा निर्देश का किसी को परवाह नहीं, है ना? तो ज्ञानियों के दिशा निर्देश का उल्लंघन करके अगर हम धर्म करने का प्रयास करेंगे तो धर्म नहीं होगा। धर्म होने का भ्रम कितना ही पाल लो नहीं होगा। ज्ञानियों ने क्या दिशा निर्देश दिया? पहले तत्व निर्णय करो, तत्व विचार, पहले तत्व श्रवण, श्रवण के बाद विचार, निर्णय और प्रतीति, और उसके बाद सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र। इसने निर्देश दिया आगे ये नतीजा क्या स्वरूप, जो काम अनंत काल में अनंत बार कर चुके वही काम इस भाव में भी करें और जिंदगी बर्बाद कर ले, अपनी इसमें क्या मतलब है, है ना? तो तब तो निर्णय, ये निर्णय होना चाहिए। आचार्य देव मुझे ये कहना चाह रहे हैं ना, एक जन्म एक मरण का प्रश्न हो वहां गंभीरता इतनी आती है कि डॉक्टर के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता, जहां अनंत जन्म मरण के मिटाने का प्रश्न हो उस प्रसंग में हमारी कितनी गंभीरता होनी चाहिए। उसमें आचार्य भगवंतों के ज्ञानी धर्मात्माओं के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके कोई भी हम काम करेंगे तो उसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा। समझ गए? बहुत गंभीर समझ की बात, ये इतना इतना गजब का तत्व कि तू सिद्ध समान कौन के लोग तो यहाँ अनेकांत के नाम पर सिद्धों को परतंत्र स्थापित करने में लगे हुए। अरे अनेकांत है, सिद्ध भी कथन चित स्वतंत्र है, कथन चित परतंत्र है, कैसे परतंत्र है? देखो धर्म ग्रह में नहीं था तो वही डूब गए ना? ये अनेकांत की धज्जियां उड़ाने वाले जैनी सिद्ध को परतंत्र सिद्ध करने में लगे हैं। और यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं हम वर्तमान दशा में परतंत्र प्राणी को, संसारी प्राणी को हम सिद्ध समान देखते हैं, और इन वितरागी संतों की दृष्टि को कोई पहुंच पाएगा? हमें व्यवहार में उमंग आता है और आचार्य कहते हैं हमें व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है, खेद है। क्या मतलब? तो किसी को लकड़ी लेके चलना पड़े तो गौरव की बात है कि शर्म की बात है? क्या लगता है उसको? अरे भैया क्या करें, पराधीन है, चला नहीं जाता, लकड़ी लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है लेकिन लकड़ी लेकर के चलना पड़े, वो क्या लेकर के चलना पड़े ना, उसमें किसी को गौरव नहीं आता। देखो दो पैर से तो सभी चलते हुए तीसरे पैर से भी चलते आता है, ऐसा गौरव नहीं आता ना? यहाँ भी आचार्य भगवान वही बात करें। देखो इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृत चंद्र सूरी ने श्री स्वयं साक्षी आत्मचाटी नाम की टीका के टीका में पांचवें श्लोक द्वारा कहा है कि देखो क्या कहा, बहुत अच्छा श्लोक है, और आचार्य अमृत चंद्र देव का श्लोक है, क्या कहते हैं आचार्य देव, कि यद्यपि व्यवहार नहीं, यद्यपि व्यवहार नहीं, इस प्रथम भूमिका में जिसने पैर रखा है ऐसे जीवों को अरे रे कहकर के खेद व्यक्त किया। ये अरे रे शब्द है ना, कि खेद हुआ चाहिए, अरे रे हस्तावलंब रूप भले हो, क्यों, क्योंकि बोल सको अभी अभी ये शब्द पढ़ ना तो इसमें उल्टा होता है। देखो व्यवहार ने पहली पदवी में हस्तावलंब कहा कि नहीं कहा, हस्तावलंब का मतलब ये कि भाई तुझे जिनवा तत्व निर्णय करने के लिए तत्व को समझना पड़ेगा, और समझने और समझाने की प्रक्रिया वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने की प्रक्रिया को व्यवहार नय के माध्यम से संपन्न होती है। ध्यान में आएगी नहीं, व्यवहार नय प्रतिपादक है और वस्तु स्वभाव प्रतिपादक है, और वो ऐसा ही है जैसे अपन पहली क्लास में जब पढ़ते थे। अभी नए बच्चे उनको तो कपा नहीं, उनको बताएं तो पढ़े समझ में नहीं आए। उस जमाने में अपन लोग क्या करते थे, एक स्लेट होती थी, कॉपी थोड़ी देते थे, रफ कॉपी नहीं आती थी, स्लेट होती थी, एक वो होती थी लिखने की पेंसिल टाइप की, वो खड़िया टाइप की होती थी ना, और अपन उसमें ए आ लिख करके लिखते थे, मिटाते थे, लिखते थे, मिटाते। अब उस आई हमने पहली क्लास में जब हम पढ़ने गए तो हमने उस स्लेट के माध्यम से सीखा। ये बताओ स्लेट का कितना उपकार है, कि जिसने तुमको अरा लिखना सिखाया, आगे बढ़े तो स्लेट छोड़ दी। अब कोई ऐसा निकला भाई साहब मैं कॉलेज को जाऊंगा लेकिन ये स्लेट मेरे पास है, क्यों जाएगी, अरा इसी के प्रताप से सिखाऊंगा, तो कॉलेज में जाने लायक है। इसी को दूसरा उदाहरण, गुरु जी ने अपने को पहली क्लास पढ़ाया, अगर हम लोग पांचवी क्लास पढ़ाए पहली से आगे बढ़े तो पांचवी क्लास में जिस गुरु जी ने अपने को पढ़ाया बहुत मार्मिक, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार पढ़ाया। अब हम कहें कि भाई साहब इन गुरु जी का हम पे इतना उपकार है कि इन्होंने इतना बढ़िया पढ़ाया, अब मैं तो ये क्लास कभी छोड़ नहीं। मैं तो ये क्लास कभी छोड़ नहीं, इतने बढ़िया गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं तू मेरा शिष्य कहलाने लायक है, क्यों, तो मेरा शिष्य वही हो सकता है जो लौट करके कभी उसी कक्षा में नहीं आए, वो मेरा शिष्य, और जो लौट लौट करके उसी कक्षा में आवे, शिष्य के लिए जितनी शर्म की बात है गुरु के लिए भी कम शर्म की बात है। रिजल्ट बिगड़ता है तो गुरु जी में भी डंडा पड़ता है नहीं। अरे क्या बात कर रहे, इनका इतना उपकार है, तो व्यवहार नय का इतना उपकार है, ये तो हमारे गुरु जी है, इन्होंने तो हमें निश्चय तत्व समझाया है, अगर ये व्यवहार नय नहीं होता तो हम निश्चय को समझते कैसे, क्योंकि प्रतिपादन तो व्यवहार को होता है। ऐसा मान करके कोई व्यवहार को अपने कलेजे से लगा आचार्य कहते यथस्य देश प्रसाद सिद्धि पाई की छठी नंबर की कथा। अरे व्यवहार जिसका प्रतिपादन करने के लिए है, व्यवहार के माध्यम से जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है तो उसको पकड़ो। व्यवहार किसका प्रतिपादन करता है, निश्चय वस्तु स्वरूप का, तो उस वस्तु स्वरूप को पकड़ो। व्यवहार के एक और एक सूत्र सुन लेना, व्यवहार के निषेध में ही व्यवहार की सफलता है। क्या क्या हम तो समझ नहीं आया तो भाई उदाहरण सुनते हैं। मान लीजिए आज के लिए कंपनियां होती ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, अपने माल का, माल तो खैर अच्छा होता ही है उनका, लेकिन माल से भी बढ़िया उनकी पैकिंग इतनी बढ़िया होती है, लोग बहुत से लोग तो पैकिंग को देख करके ही माल खरीदते हैं, क्या गजब की पैकिंग है, क्या गजब की पैकिंग है। अब ठीक है, अब वो गजब की पैकिंग है, अब वो गजब की पैकिंग वाला माल तो ले आया, लेकिन वो कहे ऐसी बढ़िया पैकिंग, इस पैकिंग को तो मैं फाड़ूंगा नहीं, तो कंपनी कहेगी हमारा तो दिवाला ही पिटेगा। अगर सारे ग्राम ये सोच ले तो हमने पैकिंग का ही लिए रखी थी भाई, तो पैकिंग पर भी, पैकिंग से भी आकर्षित होकर के तुम माल खरीदो, और पैकिंग की सफलता कब है, जब उस पैकिंग को फाड़ कर उसके अंदर जो माल रखा है उस माल का तुम उपयोग करो तो उस पैकिंग की सफलता है, नहीं तो कंपनी गई, हमारा बोल उल्टा हो। इसी तरह व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, निश्चय को बतलाता है। क्यों? क्योंकि निश्चय का अपना कोई वचन नहीं होता, निश्चय का एक शब्द है न तथा। व्यवहार मैंने जो कहा निश्चय एक शब्द बोलेगा न तथा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा निश्चय मतलब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है और निश्चय व्यवहार का निषेध करता है। व्यवहार का निषेध नहीं करे तो वो निश्चय नहीं, और व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन नहीं करे तो वो व्यवहार है। तो प्रतिपादन व्यवहार है, किसका प्रतिपादन, वो जिसका प्रतिपादन कर रहा है, मैंने वो जिस प्रतिपादन करके जिस वस्तु को समझाना चाह रहा है उस वस्तु को, ये है। तो कहते भले ही अवलंबन लेना पड़ता हो तो भी अरे रे हस्तावलंबन भले हो अरे रे, तथापि जो जीव चैतन्य चमत्कार मात्र पर से रहित ऐसे परम पदार्थ को अंतरंग में देखते हैं उन्हें यह व्यवहार नए कुछ नहीं है। देखो जिस समय अपन बच्चे को प्ले ग्रुप में एडमिशन दिलाते हैं, केजी पीजी जो भी है उस समय अपन एडमिशन दिलाते हैं, उसी समय हमारा ये अभिप्राय होता है कि नहीं होता, इस बच्चे को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, फलाना बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, होता है कि नहीं? तुमको इंजीनियर बनाना तो इसमें क्यों पढ़ा, इसमें पढ़े बिना इंजीनियर बनेगा नहीं, इसमें पढ़े बिना इंजीनियर नहीं बनेगा, फिर इसमें से निकालते क्यों, कि यहां से निकले बिना बनेगा नहीं। आगे सुन, यही है, व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होगा, और व्यवहार को ही पकड़ करके बैठ जाए तो निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हें निश्चय की प्राप्ति करना है कि नहीं करना है, प्राप्ति करना है तो व्यवहार का लक्ष्य होगा, और निश्चय को समझना है तो व्यवहार इसका प्रतिपादन करता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभेद वस्तु भगवान आत्मा दृष्टि का विषय है, ये अभेद वस्तु को समझने के लिए भेद से समझाना पड़ता है, तो भेद से समझाए किसने उसको, अभेद, तो भेद से जिस अभेद को समझाया उस अभेद को नहीं समझे और भेदों के विस्तार में मजा आवे उससे लोग तो और ज्यादा कलाकार होते। कहते महाराज आप हमें भेद बता रहे हो ना, हम आपको प्रभेद बताते हैं, हम तो आपसे एक कदम आगे हैं, आपने इतने भेद बताए नहीं भी बताए, हम आपको इन भेदों के भी प्रभेद बताते हैं। आचार्य कहते हैं भाई भेद बताना भी हमारी मजबूरी है, क्यों, क्योंकि भेद बताए बिना तुम अभेद को नहीं समझ सकते थे, तो भेद बताना मजबूरी है और प्रभेद में जाना बेवकूफी है। क्यों जाते ज्यादा भेद प्रभेद हो रहे हैं, आगे समझ आ गया, तो वो यहाँ पे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो व्यवहार में कुछ नहीं है जो अपनी आत्मा को अपने अंतर में देखते, क्यों, क्योंकि अपनी आत्मा को अंतर में दिखाने का ही व्यवहार नहीं का प्रयोजन था, भेद के माध्यम से उसने उसी अभेद आत्मा को प्रतिपादित किया था जिसके अवलंबन से सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चारित्र हो, और हमें तो भेद में इतना मजा आने लगा हम तो भेदों से भी और आगे बढ़कर प्रभेदों में और प्रभेदों से भी और आगे बढ़कर उसमें चले गए, यदि अभेद रह जाएगा और तेरा संसार भी खरीदना होगा, तुझे क्या करना है तो नक्की कर ले। बहुत अद्भुत बात है ये, तो देखो किसी धन्य काल में ये परमानंद रचे थे, लोक में हम व्यवहार और निश्चय की हेय उपादेयता का यथार्थ प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग नहीं करें तो हमारा लोक व्यवहार नहीं चलेगा। आजकल लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो भैया कोरोना चल रहा है, तो क्या करें, साबुन रखो हाथों में, धो धो यू करके धोते रहो धोते रहो धोते रहो। तो अपन ने सोचा सर्दी का मौसम साबुन लगाने की, बोली नहीं गवर्नमेंट भी बोल रही है, डॉक्टर भी बोल रहे, तुम्हें बोल रहे हैं बार बार साबुन से हाथ धो। हम तो ऐसा करते थे एक बार साबुन लगा लेते बाद में धोते ही लगाए रहने में साबुन सबको लगा ही दो, कौन बार बार लगा रहे। अरे निकालना ही है तो लगाना क्यों, और लगाना है तो निकालना क्यों। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप साबुन हाथ, आपने साबुन हाथ पे लगा लिया उसको निकालोगे रोटी खा सकते और कोई काम कर सकते, तो क्या मतलब कि लगाना भी पड़ेगा और लगा के निकालना भी पड़ेगा। साबुन के निकालने में ही साबुन के लगाने की सफलता है, व्यवहार के निषेध में ही व्यवहार के व्यवहार की सफलता है। आ गया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण। आप लोक जीवन में अगर इन उदाहरणों का प्रयोग करोगे तो निश्चय और व्यवहार में, तो कहता हूँ कभी कभी उसने समय सार चाहे जिसने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन जिसने लोक व्यवहार में ये उदाहरणों का प्रयोग किया हो, समय सार का पूरा सिद्धांत इसमें से अपन लोग निकाल सकते। लगाओ ऐसे ऐसे एक व्यवहार में का आश्रय लेना पड़े, भले समझने समझाने के लिए लेना पड़े तो भी उसे खेद मानना। व्यवहार में का आश्रय लेने में गौरव का अनुभव नहीं करते, है ना। और जैसे ही अपना प्रयोजन सद जाए व्यवहार में को कहना भाई साहब जी, पांचवी कक्षा के अध्यापक जी को रिजल्ट आते जय जिन्हें बोलते कि नहीं बोलते, फिर छठी क्लास में रोज रोज उनकी क्लास में बैठे, छठी क्लास में चला गया विचार जी, नहीं मैं तो उन्हीं गुरु जी की क्लास में बैठा क्यों, वो मुझे अच्छे लगते हैं, ये अच्छी बातें नहीं है ना। इसी तरह बार बार परमा
आत्म करूँ जान।